हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना बल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जना बल्लभ गिरिवर धारी जय जसदानंदन ब्रज जनरंजना जसदानंदन ब्रज जनरंजना जसदानंदन ब्रज जनरंजना जसदानंदन ब्रज जनरंजना जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Bolo Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath. Oh, Jaya Jagannath, Swami Jaya Jagannath. Jaya Jagannath, Swami Jaya Jagannath. Oh, Jaya Jagannath, Swami Jaya Jagannath. Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Oh, Prabhu Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vaishnavada Paramahansa Parivrajaka Charyastu Sarasvati. Yes, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai Vaishnavada Paramahansa Parivrajaka Charyastu Sarasvati. ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की समवेत भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरतमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत जयाद्मुदीरये नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति न इष्टके हरे कृष्ण श्रीमद्भागवतम पढ़ेंगे कैंटो 9 अध्याय 14 श्लोक 42 गंधर्वानुपधावे मंस्तुभ्यं दास्यन्ति मामीति तस्य संस्तुतत् संतुष्ट तस्य संतुष्ट तुष्टा अग्निस्थाली दुदुनृपा उर्वशी मन्यमानस्ताम् स्वबुध्यते चरण वने गंधर्वनिपधावे मांस्तुभ्यं दास्यति माम मेति तस्य संस्तुतस्तुष्टा अग्निस्थाली दुदुनृप उर्वशी मन्यमानसाम् स्वबुध्यते चरण बने बोलिए उर्वशी गंधर्वाधवे मां तुभ्यं दस्यन्ति मामिति अग्निस्तानि ददुर्नुप शब्दावत ऐसे हैं श्लोकों का, मेरे पीछे कृपा करके बोलिए। गंधर्वाण गंधर्वों की उपधाओ जाकर शरण लो, ईमान इन तुभ्यम तुमको दास्यन्ति देंगे मां इति मेरे ही जैसे, तस्य उसके द्वारा संस्तुत स्तुति करने पर तुष्ट प्रसन्न होकर अग्निशालिम अग्नि से उत्पन्न कन्या ददु दिया नृप हे राजा उर्वशीम उर्वशी को मान्यमान सोचते हुए ताम उसको स ओ पुरुरवा अबुद्ध्यत समझ गया चरण विचरण करते हुए बने वन में। ट्रांसलेशन एंड पर्पस, उसके पहले एक दो श्लोक है पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे। ये जानकर कि उर्वशी गर्भवती है, पुरुरवा अपने महल में वापस आ गया। एक वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में ही उर्वशी से पुनः उसकी भेंट हुई। तब वो एक वीर पुत्र की माता थी। वर्ष के अंत में उर्वशी को फिर से पाकर राजा पुरुरवा अत्यधिक हर्षित था और उसने एक रात उसके साथ संभोग में बिताई, किंतु उससे विलग होने के विचार से वो अत्यधिक दुखी था। इसलिए उर्वशी ने उससे इस प्रकार का कहा। आज का श्लोक ट्रांसलेशन एंड प्रॉपर्ट ये डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम गंधर्वों की शरण में जाओ, क्योंकि वो मुझे पुनः तुम्हें दे सकेंगे। इन वचनों के अनुसार राजा ने स्तुतियों द्वारा गंधर्व को प्रसन्न किया, और जब गंधर्व प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसे उर्वशी जैसे ही अग्निस्थली कन्या प्रदान की। यह सोच कर कि ये कन्या उर्वशी ही है, वो राजा उसके साथ जंगल में विचरण करने लगा, किंतु बाद में उसकी समझ में आ गया कि ये उर्वशी नहीं अपितु अग्निस्थली है। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि पुरुरवा अत्यंत कामी था, अग्निस्थली प्राप्त करने ही उसने उनके साथ संभव करना चाहा, किंतु संभव के समय उसे पता चल गया कि उर्वशी नहीं अपितु अग्निस्थली है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति जिस स्त्री के प्रति आसक्त रहता है उसके विशिष्ट लक्षणों को वो संभव के समय जानता रहता है। इस तरह पुरुरवा संभव के समय समझ सका कि अग्निस्थली कन्या उर्वशी नहीं थी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपां साग्रजातं सगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखानुसंस्थं हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो भागवत के ये जो पुरुरवा के प्रसंग चल रही है, बड़े गंभीर प्रसंग है, खास करके वैष्णवों के लिए, क्योंकि ये एक प्रकार भक्तों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कभी भी भक्तों को काम बसना मोड़ कर कहाँ भी फेंक सकती है। तो इसीलिए भक्तों को जब हमें ये प्रसंग को सुनते हैं, निश्चित रूप से उनके आखिर के विषय को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पुरुरवा का जो पूरा प्रसंग है, मोटा मोटी कहा जाए पुरुरवा का जो प्रसंग है ये गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं। और यहाँ पर गृहस्थ बैठना चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ के साथ वो रहते हैं, स्त्रियों के साथ रहते हैं, ज़्यादा अनुभव होगा। फिर भी श्रील सुखदेव गोस्वामीपाद जी एक नैतिक ब्रह्मचारी हैं, और पुरुरवा प्रसंग कौन कह रहे हैं? श्रील सुखदेव गोस्वामीपाद जी बता रहे हैं। ये गृहस्थ जीवन का किसे खुला खुला बातें होती है, एकदम यह है कि भाई नैष्ठिक ब्रह्मचारी कह रहा है। क्योंकि भक्त जो होता है उनको दो प्रकार का अनुभव हो जाता है, एक भौतिक और आध्यात्मिक, और अभक्तों को केवल भौतिक का अनुभव होता है, किंतु भक्तों को वो दोनों का हिसाब उनके हृदय में चली जाती है, मालूम चल पड़ती है। इसलिए हाँ, भले गृहस्थ न हो करके भी गृहस्थ जीवन में किस प्रकार का नंगापन है दिख पड़ती है, हाँ नज़र में आ जाती है जो भी है। तो हमें पिछले कई भक्तों के मुंह से सुने हैं, पुरुरवा ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे 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 बहुत कुछ सुने हैं। प्राय भक्तों के मुंह से हमें पुरुरवा का चरित्र को दिखाते हुए हम सुन चुके हैं। वास्तविक देखा जाए ना, पुरुरवा ऐसे नहीं है। पुरुरवा यदि ऐसे होते तो इतने बड़े हुए, हाँ नारद जी जैसे महान संत स्वर्ग में उनका कीर्ति को नहीं गाते। पुरुरवा यदि ऐसे एक घृणित व्यक्ति होते, एक कामुक व्यक्ति होते, भले ये श्रीमद् भागवतम के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है पुरुरवा बहुत बड़े कामी है, बहुत बड़े कामी व्यक्ति है, किंतु यहाँ पर ब्रह्मवद्य गौड़ीय संप्रदाय के जो भक्त होते हैं नारद जी के पदचिन्हों पर चलते हैं। तो नारद जी के पदचिन्हों पर चलते हुए हमें ये यहाँ पर निर्णय लेना है, पुरुरवा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, कोई सामान्य नहीं थे। ऐसा होता तो पुरुरवा ये नारद जी स्वर्ग भौतिक संसार में नहीं, स्वर्ग जैसे जगह में वो देवताओं के बीच में, अप्सराओं के बीच में वो नारद जी के चरित्र का बखान कर रहे हैं, नारद जी का चरित्र का बढ़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। नारद जी का ये पुरुरवा का आजीवन का जो चरित्र है वो श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री लघुपाद की। तो नारद जी जैसे संत बोनाफाइड है। नारद जी कौन है? प्रामाणिक भक्त है। ऐसे के आचार्य जो व्यक्ति को, पुरुरवा जैसे व्यक्ति को उनका चरित्र का उज्ज्वलता प्रशंसा को कह रहे हैं, तो वहां पर हमारे जैसे भक्तों को उनका नेगेटिव नहीं, उनका इस प्रकार का नहीं सोचना चाहिए, ऐसा हमें सोच ही नहीं सकते। तो यहाँ पर और एक दूसरी बात दिखती है कि श्रीमद् भागवतम में जो भी चरित्र आए हुए हैं वो सारे कुछ सारे पवित्र है। भागवतम के भीतर जो भी आए हुए वो पवित्र है, संत है, भक्त है। और भागवतम में भागवत इसीलिए है, भागवत किसके लिए ना, भक्त भागवत किसको लेके, भक्त और भगवान ये दोनों को, भक्त और भगवान वो दोनों को लेकर के श्रीमद् भागवतम महापुराण है। और ऐसे जब चरित्र हमारे नजर में आते हैं तो हमें ऐसे नीच बुद्धि, इस प्रकार का मन की कमजोरी के द्वारा हमें इस प्रकार का सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि महान भक्तों की जो कार्यकलाप है साधारण व्यक्ति के लिए अगम्य है, समझ ही नहीं सकता। भले कार्य साधारण दिखता है लेकिन उनका हृदय और कुछ है। जैसे हाँ, यहाँ पर और एक बात दिखती है, पुरुरवा जदियो इस प्रकार का कामुक जीवन को अपनाते हैं, दिखती है हाँ, पुरुरवा कामुक जीवन को अपनाए किसके लिए? एक वैष्णव का एक खोबी होती है अपने प्रभु के जस को बढ़ाने के लिए, प्रभु का कीर्ति को संसार के भीतर स्थापन करने के लिए वो अपने जीवन में बदनामी को स्वेच्छा से अपना लेता है। ठीक उसी प्रकार पुरुरवा का जीवन यहाँ पर साफ साफ दिखती है। पुरुरवा जदियो जदियो कामी व्यक्ति के रूप में दिखते हैं, सामने आते हैं, फिर भी भगवान के प्रति, अपने प्रभु के प्रति इतने झुके हुए हैं, अपने इतने झुकाव उनका है, इतने अनुरक्त है, इतने शरणागत है तो फिर इस शरणागति का जो शक्ति है तो ये संसार की बदनामी उनको छू नहीं पाता है। उस संसार की बदनामी के द्वारा भले आम जनता के सामने उनका बेशरम निर्लज गाथा को गाई जा रही है, इस प्रकार के साधारण व्यक्ति भी नहीं करेगा। नंगा होकर के स्त्री के पीछे भागना पुरुरवा जैसे व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति ये काम नहीं करेगा। लेकिन देखिए पुरुरवा इतने हद तक मतलब कामुक जीवन को दिखाते हैं, देखो ये दुनिया देखो, जब काम में होता है ये व्यक्ति उनका अंतिम नतीजा, उनका अंतिम परिणति क्या निकलती है, ये बात को कह देने के लिए संसार के लोगों को तो पुरुरवा इस प्रकार का एक घृणित अभिनय मात्र करते हैं। है ही नहीं वो, लेकिन अभिनय करते हैं। किसी लिए ना, संसार के लोग जो काम में पड़े हैं, काम में लगे हुए हैं, ऐसे संसारी कामों के लोगों को प्रेम की ओर मोड़ देने के लिए, कामी व्यक्तियों को प्रेम की संधान देने के लिए तो पुरुरवा यहाँ पर इस प्रकार का एक घृणित चरित्र का अभिनय करते, एक्टिंग करते हैं, लेकिन है ही नहीं, वास्तव में है ही नहीं ऐसे। जैसे एक भक्त भी जाता है मीरा रोड बाजार में और एक भौतिकवादी बिक जाता है, लेकिन भक्त जब जाता है सब्जी खरीदता है फल खरीदता है, और एक भौतिकवादी भी जाता है सब्जी खरीदता है फल खरीदता है, लेकिन भक्त जब खरीदता है उनके हृदय रहता है भगवान के प्रति, मैं जो भी ले रहा हूँ ये भगवान के लिए, लेकिन भौतिकवादी जब खरीदता है अपने पत्नी बच्चे अपने घर के लिए, तो ये दोनों के भीतर बहुत बड़ा तफात दिखती है। यदि वो कार्य समान है, भक्त भी सब्जी खरीदा अरे क्या भौतिकवादी भी सब्जी खरीदा, कार्य समान है लेकिन चेतना का फर्क हो जाती है, हृदय का अंतर पड़ जाती है। उनका हृदय रहता है भगवान के और उनका हृदय रहता है अपने पत्नी बच्चे अपने घर का। तो ये कार्य का भले कार्य समान बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो दोनों का कार्य समान है, लेकिन जो कार्य के पीछे जो हमारा अंतकरण जो स्थिति है उस स्थिति बदल जाती है। तो उसी प्रकार इस दृष्टि से यदि हमें पुरुरवा का चरित्र को अनुध्यान करेंगे तो फिर हमें इसमें से कामुक जीवन के प्रति विरक्ति उत्पन्न कर पाएंगे। कामुक जीवन के प्रति हमारा सहज घृणा उत्पन्न होगा। मोटा मोटी देखा जाए ना, कामुक जीवन निश्चित रूप से दुखदायी होती है। काम एक प्रकार का अग्नि है, जिस प्रकार एक पतिंगा अग्नि को स्पर्श करते जाते ही वो नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक कामुक व्यक्ति जैसे ही काम वासना को बुझाने के लिए प्रयास कर तुरंत वो नष्ट हो जाता है। काम ऐसा एक आग है ना, तुरंत वो जला देता है। और यही बात तो भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते, जय ही संस्पर्श लाभ होगा दुख यो नवते आदि अंतवत कौंतेय नतेसु। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ये सब चीजों में आग्रह नहीं करेगा। आज प्रहलाद महाराज भी यही बात को कहते हैं, गृह मैथुन आदि सुखम तुच्छ में थर्ड क्लास काम है। गुड़ा के स्वरूप तो ये कर करके कहते हैं ये थर्ड क्लास काम हम नहीं करेंगे। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर कहते हैं कि गृह मैथुन आदि सुखम तुच्छम, एकदम थर्ड क्लास काम है। और यही बात भी भागवतम के भीतर आती है, गृहेशु कुटधर्मेशु पुत्र द्वारा धन अर्थ दि न परंग बिंदते मोड़ा भ्रमायन संसार वत्मसु। काम वासना में जो व्यक्ति होता है ना, तो अपने पत्नी बच्चे घर और बस घर धन उसके आगे और कुछ उसको कुछ दिखता नहीं है कि काम एक अंधापन है। काम व्यक्ति का बड़े बड़े साधक लोग भी इसी के चक्कर में झुक जाते हैं, अपने आध्यात्मिक चेतना को खो बैठते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ये काम इतने शक्तिशाली है, सारा संसार उनके नियंत्रण, ये काम इतने हरंती प्रसवंग जबरदस्त ले जाता है, चाहता नहीं है, कोई चाहता नहीं है इस प्रकार घृणित जीवन को जाने के लिए, लेकिन न चाहते हुए भी हाँ इस प्रकार का बाय को एक धक्का लगा करके ये काम हमें करा लेता है। इसीलिए यहाँ पर पुरुरावाद के प्रसंग में दिखा जा रही है, मैं क्या बता रहा था पहले, तो गृहस्थ व्यक्ति जो गृहस्थ नहीं, जो इसी प्रकार पुत्र धारा धन अर्थ उसके आगे और उनका कुछ दिखता नहीं है, और ऐसे आगे न देखने वाले, आगे न देखने वाले ऐसे व्यक्ति ना, वो फिर भगवान का चरण का भेंट नहीं हो पाती है, भगवान का चरण कमल का दर्शन उनको हो ही नहीं सकता। जब तक हमें विषय वासना में रहेंगे, अपराध करें, विषय वासना जब तक हमारे मन में उनके भीतर बैठी रहेगा, तब तक हमें भगवान का दर्शन नहीं हो सकती है। और इसी प्रकार वो व्यक्ति संसार के लाखों जुनियों में चक्कर लगाता है, नाना प्रकार के जुनी में चला जाता है। हम देखते हैं वर्तमान स्थिति में संसार के लोग खोल खोल के पाप करते हैं, इतने पाप करते हैं आगामी जीवन में वो नरक जाने वाले, पशु जीवन में जाने वाले। और ऐसे मनुष्य का, ऐसे संसार के भीतर बद्ध जीव का इस स्थिति को देखकर परीक्षित महाराज अपने श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर दिए, आप मुझे बताइए उनका सोल्यूशन क्या है। ये वर्तमान संसार के लोग इसने ऐसे ऐसे घृणित काम कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप नरक है, परवर्ती कदम उनका नरक है। तो ऐसे नरक जाने वाले लोगों को कैसे रोका जाए, ऐसे नरक जाने वाले लोगों को कैसे बचाया जाए, आप एक निराकरण, एक उपाय, समाधान बताइए। ये परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर देते हैं। वैष्णव का कुछ अपनी निजी समस्या नहीं रहती है, वैष्णव के सम्मुख में अपनी की चिंता नहीं रहती है। एक वैष्णव पति तो बधा बद्ध जीवात्माओं के प्रति इतने दयालु रहता है इस जीवन में, और उनका आगामी जीवन में वो कैसे सुखी बने उसके विषय में वो योजना प्लानिंग बनाते रहता है। वैष्णव इतने दयालु हृदय में इतने ऐसे रहता है, वो बद्ध जीवात्माओं का जीवन के विषय में उनका सारे कार्य, उनका दिनचर्या बद्ध जीवात्मा का सुख के विषय पीछे में रहता है, अपने सुख के अपने विषय में चिंतित नहीं रहता है, अपने लिए उनको कुछ चिंता नहीं होती। यही बात भी प्रहलाद महाराज जब भगवान हरसिंहदेव कहने लगे चलो बैक टू गढ़ चलो, प्रहलाद महाराज प्रभु रुक जाओ बस। तो जब तक ये भौतिक संसार से सारे बद्ध जीवात्मा को आपके पास नहीं पहुंचा देता, तब तक जाने के लिए मेरा इच्छा नहीं है, मैं मेरे लिए चिंतित नहीं हूँ। प्रहलाद महाराज भगवान को बताएं कि मैं मेरे लिए चिंतित नहीं हूँ। जो लोग ये संसार के माया सुख में लगे हैं, माया सुख अर्थात क्षणिक सुख के पीछे पड़े हुए हैं, जो लोग प्रभु आपका भक्ति का ज्ञान नहीं है, जो लोग कलयुग में आपके चरण कमल को भेंट करने के भेंट पाने के लिए रुचि नहीं रखते, आपके भक्ति के प्रति रुचि नहीं रखते, ऐसे लोग ऐसे लोगों के लिए मैं बड़े व्यथित हूँ, बड़े व्यग्रह हूँ, बड़े चिंतित विचलित हूँ। ये बात को प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव को कहते हैं। देखा जाए ना ये बात है, समग्र संसार में वर्तमान कृष्ण भावना अमृत की अभाव है, और लोग इतने अज्ञान पीड़ित है, इतने अज्ञान में पीड़ित है, घोर अज्ञान में पीड़ित है, इतने अज्ञान में पीड़ित है ना, तो इस जीवन के बाद आगामी जीवन के बाद तो सोच ही नहीं सकते। इस जीवन के बाद आगामी जीवन क्या क्या होगा ये विषय में वो कभी विचार नहीं कर पाते। अरे ये भी है, भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवनों में तथा कभी कुछ ना कुछ सुख दुख लगा हुआ है। आप दुख नहीं चाहते हो, आता है, सुख बिना प्रयास के आता है। तो प्रभुपाद जी यहां पर ऐसे बताते हैं कि दुख के विरुद्ध में लड़ना और सुख के लिए कठोर श्रम करना ये समय और शक्ति का अपव्यय मात्र है। प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं, दुख के विरुद्ध में लड़ना और सुख के लिए कठोर श्रम करना ये समय और शक्ति का अपव्यय मात्र है। भौतिक जीव भौतिक शरीर स्वीकार किए, सुख दुख तो आते ही रहेंगे, आते आएंगे, ये अवस्था से ये दशा से हमें कभी बच ही नहीं सकते। तो बुद्धिमानी ये है, ये मनुष्य जीवन में कैसे भगवत स्मृति को जागृत कराए, ये बुद्धिमान व्यक्ति। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, यदि वास्तव में कोई व्यक्ति ये कामुक जीवन से पार होना चाहता है, तो तुरंत उनको भक्ति का आश्रय लेना चाहिए, जिसका शुभारंभ श्रवण कीर्तन विष्णु अर्थात भगवान के नाम के महिमा का कीर्तन और उनका कथा का श्रवण से शुरू होती है। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन उसको सिद्ध कर, वस्तु तो उसको सिद्ध कर दिया है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसको सिद्ध करके दिखा है, प्रमाण करके दिखा है। कैसे कैसे घृणित कदर्ज व्यक्ति आकर के जुट जाते हैं, यही बात पाश्चात्य के जो जवान थे जैसे ही वो नशेली दबाव में लत थे, अनेक बुरी आदतों में अपने जीवन को जोड़ रखे थे, जैसे ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित तो हो गए और गंभीर के साथ भगवान की कथा कीर्तन में जुट गए, दूसरे शब्द में रजो और तमोगुण में संपन्न कार्यों का जो प्रायश्चित का ये पूर्ण विधि है, जैसे ही जुड़ गए ऐसे बुरे आदत में, ऐसे घृणित कार्य में ऐसे लगे हुए थे, जैसे भगवान का कथा कीर्तन श्रवण कीर्तन में सब लग गए ना, जुड़ गए ना, तो ये प्रभुपाद जी वहां पर बताते हैं कि वर्तमान संसार रजोगुणी और तमोगुणी का है, और ऐसे रजोगुणी और तमोगुणी में जो कार्य किया जाता है उनका प्रायश्चित का पूर्ण विधि है भगवान की कथा, भगवान की कथा कीर्तन और उनका कथा का श्रवण, ये बिल्कुल विधि है, ये बात को प्रभुपाद जी बताते हैं। और हमें ये भी देखेंगे कि पुरुरवा ऐसे एक कीर्तिवान व्यक्ति पुरुष थे ना, तो नारद जी जैसे महान संत स्वर्ग में जाके उनका प्रशंसा कर रहे थे, और उनका शुद्ध चरित्र के द्वारा शुद्ध चरित्र में आकृष्ट होकर के उर्वशी जैसे अप्सरा भी उनको उर्वशी जैसे अप्सरा उनके प्रति उनके शुद्ध चरित्र के प्रति आकृष्ट हुआ। बचपन के समय हमें एक इंग्लिश में प्रभार पढ़े थे, तो इसमें लिखा था ऐसा कि मनी इज लस्ट, नथिंग इज लस्ट, और हेल्थ इज लस्ट, समथिंग इज लस्ट, और कैरेक्टर इज, इफ कैरेक्टर इज लस्ट, एवरीथिंग इज लस्ट। ये बात हमें पढ़े थे, यदि आपका पैसा नष्ट होता है तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य नष्ट होता है थोड़ा, लेकिन आपका चरित्र जब नष्ट होती है ना तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। व्यक्ति के पास जो चीज है ना, वो चीज का महानता को वो नहीं समझता है, दूसरे का देख कर जलता है, दिस इज अ सिम्टम्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये इंद्रिय तृप्ति का पहचान है। हमारे पास जो है उसको हम नहीं देखते हैं, दूसरा का देख कर जलन होती है, ये इंद्रिय तृप्ति का एक बहुत बड़ा बीमारी है, ये बहुत बड़ा कमजोरी है, ये इसी के वजह से हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट होती है। हमारे पास जो भगवान दिया उसके द्वारा सिद्धि हरितोषणम, हमें सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे इसमें कोई अब संदेह नहीं है, लेकिन मार्ग कहां पर हमें खा जाते हैं, दूसरे को क्या मिला ना इसमें हमें तड़पते हैं, इसमें हमें ईर्ष्यान्वित होते हैं। अब इस भावतम के भीतर बाकी सारे बीमारी का दवाई है, लेकिन ईर्ष्या का कोई दवाई नहीं निकला अभी तक, भावतम कोई ईर्ष्या का दवाई कोई निकला नहीं है, उनका विनाश है, ईर्ष्या जो करेगा उनका विनाश है। और पितामह भीष्म भी यही बात को कहते हैं, जो व्यक्ति ईर्ष्या करेगा उनका आयु क्षीण हो जाएगा, पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, जो व्यक्ति संसार के भीतर ईर्ष्या करता है तो वो जल्दी मर जाएगा, यदि जल्दी मरना चाहते हो जितना हो सके ईर्ष्या करो, जल्दी मृत्यु आ जाएगा। तो ये बात को ये पितामह भीष्म महाभारत के भीतर भी बताते हैं। तो भक्त लोग खास करके ना बड़े ही सजाग होते हैं, बड़े ही सावधान होते हैं, नहीं बस और कामुक जीवन नहीं, और काम वासना जीवन में मुझे नहीं जाना, लेकिन जैसे जैसे वो सामने आ जाते हैं ना तो फिर ठेल मार जाते हैं। ये बात को ये उदाहरण को मैं सालों पहले बताया था भागवतम क्लास में। तो एक कुत्ता है, एक कुत्ता को आप सिंहासन में बिठा दो, रत्न का सिंहासन है, सोने का सिंहासन है, कुत्ता को कुत्ता जी आइए आप ये सिंहासन में बिराजिए, कुत्ता जी जाके सिंहासन में बैठ गए, और कुत्ता जी के सर में एक सोने का मुकुट पहना दिया गया। कुत्ता जी कहां पर बैठे हैं? सोने का सिंहासन में। और पहने है क्या? सोने का मुकुट पहने। और सोने का सिंहासन, सोने का मुकुट पहनते समय यदि कोई उनके सामने के हड्डी हिलाए ना तो भूल जाएगा मैं सोने का सिंहासन में बैठा है, भूल जाएगा मैं मुकुट पहना है, टूट कुद्दी मारेगा और हड्डी को चुबाएगा। और यही अवस्था है हमारा, इसी यही अवस्था है बद्ध जीव का, ये अवस्था में हमें गुजर रहे हैं, ये दशा हमारा है। थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े प्रलोभन में हमें इतने आकर्षित हो जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं हमारे हाथ में कृष्ण भक्ति लगी है, हम भूल जाते हैं। अरे थोड़े दिन के बाद में भगवद गीता क्लास में भी ये बात को बता रहा था कि जब एक व्यक्ति के हृदय में काम भावना उत्पन्न होती है ना, तो भोग करने की इच्छा होती है ना, तो और जब वो वस्तु को प्राप्त कर लेता है ना, तो उनको वो वस्तु के प्रति, वो लोभ हो जाता है। और मिल के लोभ हो गया, नहीं मिला तो क्रोध हुआ, पहले इच्छा हुआ, और जब मिल गया वस्तु, इच्छा वस्तु जब मिल गया तो वस्तु प्राप्त होने के बाद वो वस्तु के प्रति लोभ हो गया, और जब नहीं मिला तो क्रोध उत्पन्न हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण बताते ये काम क्रोध लोभ तीनों को तीनों नरक की दरवाजा है, ये तीनों को तीनों नरक ले जाने वाले ले जाने वाले चीज है। ये बात को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। और मैं एक बार कहीं पे पढ़ा था, एक सियार था, वो ऐसे जंगल में घूम रहा था और उनको बहुत भूख लग रहा था। अब भूख के मारे वो इधर इधर भटक रहा था, इधर उधर भटक रहा था, तो भटकते भटकते उनका नजर गया एक ऊपर अंगूर के पेंथा के ऊपर। ओ मुंह में पानी आ गया, और देखते ही वो अंगूर मीठा है, लगाया कुदी। एक तो भूखा था, खाया, भूख लग रहा था, और भूखे पेट में वो कुदी लगाया। अब भूखा पेट में जब कुदी मार रहा था, ऊपर कुदी मार रहा था, कुदी मारते 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 इतने थक गया, जब थक गया कह ये खट्टा है, ये खट्टे अंगूर कौन खाए। इसी प्रकार का हमारा हालत, जब काम मिल जाता है ना, तो ना काम जब प्राप्त करने की इच्छा होती है ना, तो मीठा मीठा लगता है, और जब काम हमें दुख देने शुरू करता है ना, ये खट्टा है, तो फिर मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये इस सियार की दशा में एक प्रकार का सियार है, वो सियार नहीं, सियार 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 का प्रवृत्ति, भले मनुष्य है हम लोग, ये प्रवृत्ति किसका अपना है? सियार का, जंतु जानवर। कामक कौन होता है? कामिक कौन होता है? काम का जो प्रवृत्ति है ना, वो पशु के लेवल में होती है, मनुष्य के लिए काम नहीं। काम मनुष्य के लिए तो प्रेम है, तप है, तपस्या है, मनुष्य जीवन के लिए तपस्या है, काम नहीं है। काम किसके लिए? पशुओं के लिए। तो यहाँ पर ये बात को हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। और एक बार बनमली प्रभु एक बार बता रहे थे ब्रह्मचारी क्लास में, बॉय इज गुड, गर्ल इज गुड, पर बोथ आर नॉट गुड। लड़का ठीक है, लड़की ठीक है, दोनों एक जगह में ठीक नहीं है। लड़का ठीक है, लड़की ठीक है, लेकिन दोनों एक जगह में ठीक नहीं है। जब हम सड़क में चलते हैं ना, जब हम एक पुरुष को देखते हैं ना, हम कुछ नहीं होते हैं, शांत रहते हैं। हम मतलब सबका बात नहीं कह रहे हैं, जिसका होता है। तो जब हम सड़क में गुजरते हैं तो एक पुरुष को देखते हैं, हम कुछ नहीं होते हैं, और जब स्त्री को देखते हैं तो कुछ नहीं होते हैं, लेकिन जब पुरुष और स्त्री दोनों को देखते हैं तो कुछ होता है। तो कुछ दोनों को जब एक जगह में देखते हैं ना, तो कुछ होता है। लेकिन भक्तों के लिए नहीं होता है, भक्तों के लिए नहीं है। यही बात हुआ 25 साल ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के बाद अजामिल के जीवन में यही हुआ। अजामिल जब वापस आ रहा था तो एक पुरुष और स्त्री का जोड़ी को देखा, 25 साल का ब्रह्मचर्य व्रत उनको रोक नहीं पाया, वो स्थिति से उनको बचा नहीं पाया। और ये बात भी होती है किसका जीवन में? सबरीमणि के जीवन में। सबरीमणि डर गए, अरे मैं धरती पर बैठ करके तब करूंगा, कोई स्त्री आकर के मेरा भक्ति को पंडूर कर देगा। अभी विश्वामित्र जी आंख बंद करके, आंख खोले नहीं थे, आंख बंद करके वो प्राणायाम कर रहे थे, कुंडलिनी योग कर रहे थे। विश्वामित्र जी कुंडलिनी योग साधन कर रहे थे तो आंख बंद हुआ था, उस समय मैंने कहा कि क्या कर दिया, बात हो गया। अरे सबरीमणि पानी के भीतर बैठ करके वो जोड़ी को देख करके भ्रमित हो गया। तो कहने का अर्थ काम वासना इतने प्रबल है ना, इतने शक्तिशाली है ना, कभी भी ये चीज के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी हमारा मन को ये मामले में हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लाभ न होइला किछु घटिला जंजाल, कामुक जीवन में कुछ लाभ नहीं होता है, केवल परेशान है, केवल परेशान और बढ़ जाती है। इसलिए कि बुद्धिमान व्यक्ति को निश्चित रूप से कामुक जीवन को कंट्रोल करना चाहिए। हमें दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि हर दुनिया आउट ऑफ कंट्रोल, हर व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल। हाँ, हमें दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद को कर सकते हैं। ये सोल्यूशन है। हमें दूसरे के ऊपर हमारा नियंत्रण को लगा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हमें अवश्य कर सकते हैं। यही बात को भी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, दारू भी प्रकृति हरे मुनिरपि मनः। चैतन्य महाप्रभु ऐसे बताते हैं कि काठ और लकड़े में बने हुए एक स्त्री का जो पुतला है, एक मुनि का मन को भी बिचल हर लेता है। काठ लकड़े में बने हुए पुतला एक मुनि का मन को भी हर लेती है। और प्रभुपाद जी एक बार ऐसे लेक्चर दे रहे थे, सब्जेक्ट यही था, आज की जो सब्जेक्ट चल रही है पूर्वा का, तो विषय यही था। तो प्रभुपाद जी ऐसे स्त्रियों के विषय में कह रहे थे। तो लेक्चर के बाद प्रभुपाद जी व्यासन छोड़े और छोड़ करके मालती माता जी को पूछे, व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो? तो माता जी बोले, मालती माता जी बोले, ओ श्रील प्रभुपाद, आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग, मैं कुछ ऐसा सोच नहीं रहा हूँ। मालती माता जी बोले, मैं तो कुछ सोच नहीं रहा, बिकॉज आई एम नॉट ओमेन, आई एम ए डिवोटी, आई एम ए सोल, तो आई एम नो एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन इन दिस मैटर। मालती माता जी बोले श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद, आज जो ये क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि मैं एक स्त्री नहीं हूं, मैं एक भक्त हूं, मैं आत्मा हूं, तो वो ये जो आपने स्त्री के विरुद्ध में कुछ बताए, स्त्री के विषय में कुछ बताए, तो वो विषय में मेरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरा कुछ निजी कुछ ये बताने की कुछ कहने की कुछ नहीं है ये विषय में। हाँ, क्योंकि भक्त जो होता है वो आत्मा के स्तर पे होता है, तो आत्मा के स्तर पे होने के कारण तो वो भी पुरुष और स्त्री का जो भेद है तो उनको कुछ फर्क नहीं होता, वो कुछ वो विषय में देख नहीं सकता। तो एक बार एक भक्त ने ऐसे मजाक मजाक में बोल रहे थे, जो अभक्त स्त्री है उनसे आप 5 हाथ दूर में रहो, दूर से रहो, जो अभक्त स्त्री है ना उससे आप 5 हाथ दूर से रहो, क्योंकि आप जानते हो अभक्त एक खतरा है, लेकिन जो भक्त स्त्री है माता जी है तो उससे 10 हाथ दूर रहो। मैं क्या ऐसा क्यों, अभक्त स्त्री है उनके 5 हाथ दूर में रहेंगे और भक्त जो माता जी है उनसे 10 हाथ दूर में क्यों रहेंगे? ना भक्त माता जी है, भक्त माता जी है, भक्त माता जी कह रहे ऐसे घुस जाते हैं, ऐसे घुस जाते, हो गया राम राम ऐसे तो फिर बन जा गीता का संसार बन जाती है। हाँ, पहले भगवत गीता पढ़ रहा था तो चूहा काटा, चूहा को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली को देखने के लिए गाय, गाय को देखने के लिए शादी, शादी के बाद बच्चे, ओ माय कृष्णा मैं कहाँ था, कहाँ आके पहुंच गया। हाँ, भक्त माता जी, भक्त माता जी, बस राम राम। तो इसीलिए हाँ, फिर हमें गीता का संसार करना पड़ता है, फिर हमें शुरुआत का भक्ति का जीवन को फिर रिटर्न आने के लिए प्रयास करते हैं। फिर 15 दिन में अमेरिका से रिटर्न, हमारे मंदिर के एक भक्त गए थे, अमेरिका गए थे, 15 दिन के भीतर उनको अमेरिका दर्शन हो गया, क्योंकि भक्त थे। क्योंकि भक्त जो होता है ना वो भौतिक स्थिति में कभी विचलित नहीं होता है। ये बात को भी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि आपुरी माणव अचल प्रतिष्ठम समुद्र में आप प्रविशन जगत तद्वत काम जन प्रविशन सशांत काम काम अपन सशांतम न काम अपनोति काम, ऐसे कुछ। हाँ, तो जैसे बरसात के समय समुद्र का अनेक जल समुद्र के भीतर प्रवेश करती है, किंतु समुद्र शांत जन को तो गंभीर बना रहता है। हाँ, तो मीरा रोड तक नहीं आ जाता है समुद्र, तो वही जूहू चौपाटी में रहता है। उसी प्रकार एक भक्त कामुक जगत में कितने भी काम वासना उनका सामने आए ना, तो उसमें वो कुछ अथे नहीं होता, वो अपने स्थिति में एकदम मन को कंट्रोल एकदम निश्चित करके रखता है। जैसे आप देखते हो ना कि कछुआ, कछुआ जब चलता है ना, जैसे सामने विपत्ति आता है ना, वह सारे इंद्रियों को अपने भीतर समट लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक भक्त के सामने इंद्रिय तृप्ति के विषय वासना की वस्तुएं आते हैं ना, तुरंत वो सब चीजों से अपने मुंह को मोड़ लेता है। और भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं हमारा शरीर के भीतर काम वासना कहाँ रहती है? कहाँ बताओ? मन बुद्धि अरे इंद्रिया में। हमारे शरीर के भीतर जो काम है ना वो कहाँ, उन काम का घाटी स्थान कहाँ है? मन और बुद्धि और इंद्रिय में। और हमारा जो शरीर है इंद्रियों की समाहार है। अरे इंद्रियों को शुद्ध करना है तो अमृत महाराज इन सारे इंद्रियों कैसे शुद्ध करना है एक मार्ग बताएं। आप जानते हो पिछले पीछे पढ़ के आए हो अमृत महाराज का चरित्र को। हाँ, तो कल भी राधाष्टमी है तो इसके साथ कनेक्टेड एक चीज है, तो एक काम वासना के ऊपर कनेक्टेड है। तो एक बार एक स्टोरी में छोटा सा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एक ब्राह्मण था और भगवान श्री कृष्ण का तपस्या किया। अब इतने घोर तपस्या किया भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, उनके सामने आ गए। अब जब भगवान श्री कृष्ण आए तो पूछे आपको क्या चाहिए, इतने कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? तो ब्राह्मण बोला राधा रानी को मुझे पत्नी के रूप में चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले अरे ये की रकम बर मांग लिया रे, बंगाली लैंग्वेज में अरे की रकम बर मांग लिया, अरे तू कैसे मांग लिया, अरे ऐटा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, मैं दे नहीं सकता, राधा रानी को पत्नी के रूप में मांग रहे हो, मैं कैसे संभव, ये कैसे दूंगा? तो ब्राह्मण बोला मुझे तो चाहिए चाहिए यही चाहिए। बंगाली में कहते हैं ये चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। तो किसी भगवान श्री कृष्ण बोले बस ये नहीं हो सकता है, बोल करे भाग चले गए। तो ब्राह्मण समय क्रम में उनका मृत्यु हो जाती है। फिर दूसरा शरीर में वही फिर वही ब्राह्मण आता है, आकर के फिर तपस्या करता है। तो भगवान के सामने आते हैं और आकर के आते जब आते हैं और उनको पूछते हैं क्या चाहिए ना, मुझे तो राधा रानी पत्नी के रूप में चाहिए। तो ब्राह्मण बोला अरे ये संभव हो ही नहीं सकता, आज दूसरा कुछ मांगो। तो ब्राह्मण बोला मुझे और चाहिए यही चाहिए। तो भगवान बोले बस फिर चले गए। फिर तीसरा जन्म में वो ब्राह्मण के रूप में आते फिर तपस्या करता है। तो भगवान आते हैं उनके सामने फिर यही बोलता है मुझे राधा रानी को पत्नी के रूप में चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है राधा रानी को पत्नी के रूप में चाहिए ना, बस आपको पत्नी के रूप में मिलेगा लेकिन आप नामपुंसक क्या बोलते हैं नामपुंसक बन जाओगे, वही है चंद्रसेन। हाँ, जो ब्राह्मण था ना वो चंद्रसेन बना नामपुंसक। हाँ, पुरुषोत्तम ही ना। हाँ, ये भले राधा रानी को प्राप्त किया पत्नी के रूप में, नहीं कैसे कोई पुरुषोत्तम ही नहीं होकर के वो प्राप्त किया। तो कहने की मतलब यह है तो जब भगवान हमें हमारे सामने आ जाते हैं ना, हमें इतने कामी होते हैं ना, हमारे भीतर इतने विषय वासना होते हैं ना, हमारे सामने भगवान आते ही हमें उनका दर्शन लेने का फायदा उठा लाभ नहीं उठा पाते। कदर मुनि कितने बड़े योगी थे, एक प्रकार गृहस्थ जीवन से रिटायर लिए थे। हाँ, कदर मुनि गृहस्थ जीवन से एक प्रकार का रिटायर ले चुके थे और बहुत बड़े योगी थे, लेकिन दीति के स्पर्श से आकर के क्या हुआ उनका। और यही बात को अजामिल भी 88 साल गृहस्थ जीवन का अनुभव को सारा और गृहस्थों को बताना चाहते हैं। अपने 88 साल का जो गृहस्थ जीवन का जो अनुभव है, गृहस्थी जीवन का जो अनुभव क्या होती है, अजामिल 88 साल गृहस्थ जीवन में रहने के बाद वो गृहस्थ जीवन का जो अनुभव है वो और गृहस्थों को बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कामुक जीवन गृहस्थ जीवन कैसे होता है, गृहस्थ जीवन को क्यों अपना जाता है, कुछ तो है नहीं तो ब्रह्मचारी बन जाएगा और कुछ बन जाएगा, लेकिन गृहस्थ जीवन को इसीलिए अपनाया जाता है, कुछ तो है भोग इच्छा है। ये सारे गृहस्थों की बात मैं नहीं कहूंगा, जो लोग वैष्णव गृहस्थ है वो भी एक प्रकार का गृहस्थ ब्रह्मचारी है, ऐसा नहीं समझो कि मैं ऐसा कह रहा हूं करके, लेकिन खास करके ज्यादातर दिखा जाता है गृहस्थ जीवन क्यों अपनाता है ये व्यक्ति, अपने काम वासना को बुझाने के लिए। तो आखिर में हमें यही कह सकते हैं यहाँ पर, जो मनुष्य होकर के यदि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन नहीं करता तो और कुत्ते बिल्ली के जैसे जीवन बिताता है तो अगले जीवन उनका पतित हो जाता है। यदि वो भगवान का भक्ति को नहीं अपनाता प्रकृति के नियम के अनुसार उनको नीचे जुनी में चला जाना होता है। और जो ये गिफ्ट मिला है मनुष्य शरीर जो हमें उपहार मिला है जो कि किसान अमृत होने और जीवन का समस्या को समाधान करने में जो ये मनुष्य शरीर हमें मिला है तो वो उसको हमें मनुष्य शरीर को हमें खो बैठेंगे, इतना बड़ा जो चांस है हमें मिस करेंगे। तो यही बात को पुरुरोबा अपने जीवन में ये सब चीजों को लेते हुए वो सारे दुनिया को, और चाहे वो ब्रह्मचारी हो वानप्रस्थ हो सन्यासी हो, ऐसा ब्रह्मचारियों के भीतर काम वासना नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ये काम वासना आएंगे चाहे वो कैसे कोई भी आश्रम में हो ना, क्यों काम वासना आते रहेंगे, लेकिन हमें थोड़ा साइड हो जाना है। हमें जब थोड़ा साइड हो जाता है ना तो काम वासना निकल जाती है। काम वासना तो मृत्यु तक आएंगे, ये क्या साधना के अवस्था में मृत्यु तक ये काम वासना आते ही रहेंगे। हाँ, जब तक आप भगवान का दर्शन साक्षात्कार नहीं कर लेते हो, भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर लेते हो, तब तक ये काम वासना आपको काम वासना परीक्षा लेंगे। लेकिन एक भक्त को बड़े ही चतुर बन करके थोड़ा सा हमें साइड हो जाना चाहिए। हर भक्त ये सब विषय में नहीं होता है, क्योंकि उनको एक ऐसे एक हाई क्लास का टेस्ट मिल जाता है ना, फिर काम वासना सुख उनके सामने तुच्छ बन जाता है। तो यही बात को पुरुरोबा जैसे महान व्यक्ति के द्वारा कह करके हमें भी एक प्रकार का सावधानी अपनाने के लिए एक प्रकार का प्रेरणा दी जाती है। चाहे उस व्यक्ति कितने भी आध्यात्मिक उच्च स्थिति में हो ना क्यों, ये विषय में कभी भी नेग्लेक्ट नहीं रहना चाहिए, ये मामले में कभी भी अवहेला नहीं करना चाहिए। खास करके तो हमारे जैसे जीवन के लिए ज्यादा कहा जा रहा है, जो लोग मंदिर के भक्त हैं तो ये जीवन के प्रति, बाहर जो रहते हैं ना तो वो लोग फिसल भी जाए ना, ये मैटर में यदि वो फिसल भी जाते हैं ना, उनका पैर फिसल भी जाता है ना, तो उनके लिए रिहात है। लेकिन हमें यदि फिसलते हैं ना, दुनिया ऐसे करके दिखता है तो सारा दुनिया का नजर हमारे ऊपर आ जाता है। खास कर हमारे मंदिर के निवासी ब्रह्मचारियों के लिए तो ये विषय में बड़े ही जागरूक रहना चाहिए ना। लेकिन कहीं पर भी घुसाड़ लेती है गृहस्थ जीवन, तो एकदम ऐसे गुड़ा के स्वरूप एक बार बताते थे, गृहस्थ लोग एक बाउंड्री में है लेकिन हमें बाउंड्री तोड़े हैं, हमें बाउंड्री तोड़ के हमें विचरण करते, संत विचरण थी बाउंड्री को तोड़ करके हमें बाउंड्री क्रस कर गए, तो कभी भी हमारे ऊपर अटैक हो सकती है। इसीलिए क्षण संगे न साधुसु, जो साधुओं के संग में रहेंगे, भक्तों के साथ हमें रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा रक्षा हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर पुरुरोबा के कामुक जीवन के विषय में हमें यही शिक्षा लेंगे, तो चाहे हमें कितने भी भक्ति के जीवन में प्रवीण हो, कितने भी भक्ति के जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में पुखत बन भी गए, फिर भी ये मामले के विषय में हमेशा विचारशील रहना चाहिए। खास करके भक्तों को हमेशा विचारवान होना चाहिए, क्या मुझे कामुक जीवन सुखी कर पाएगा, कामुक जीवन में सुखी है ही नहीं, क्या मुझे कामुक जीवन में मति को रमाना है या भगवान के भक्ति में मन को जोड़ रखना है। तो ये क्योंकि मन में काम प्रवेश पहले करती है, जी मन की दरवाजा को बंद कर देते हैं कि काम हमारे भीतर कोई उत्पात मचा नहीं सकता। शुरुआत के समय यदि हमें धकल देते हैं ना, हाँ काम एक जंगली पशु के बराबर है, जंगली पशु एकदम अनकंट्रोल रहता है, इसीलिए ये जंगली जानवर को, ये काम रूपी जंगली जानवर को हमारे भीतर घुसाने के पहले वो दरवाजा को बंद कर दो। मतलब मन को सवय मने कृष्ण पदारविंद, और भागवतम भी यही डिक्लेरेशन करता है, जैसे कोई भक्तों का भगवान के चरण में मन छंद जाता है, भगवान का चरण कमल में, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में पहुंच जाता है, तो फिर संसार के माया में वो फंसता नहीं है, संसार के माया में नहीं आता है। तो सारा ये संसार एक स्त्री का रूप है, ये जो भौतिक संसार है ना, ये भौतिक संसार एक स्त्री के रूप दिखा करके उनका संसार रूपी आकर्षण में प्राय सारे लोग ये संसार को भोग करना चाहता है। मतलब ये संसार एक स्त्री है, ये संसार को भोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति भाग रहे हैं, लेकिन हमें ये संसार भीतर में रहते हुए भी हमें संसार के बाहर रहना चाहिए। तो यही शिक्षा को पुरुरोबा के जीवन में लेते हुए यदि हमें काम जीवन के प्रति सावधान रहेंगे तो अवश्य हमें भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। శ్రీల ప్రభువాదకి. ఎనీ క్వశ్చన్? ఎస్. హైలైట్ హో రే. भक्त का जीवन तो ऐसे सुंदर ही होता ही है. क्वेश्चन ये है कि नारद जी स्वर्ग में पुरुरवा का कैरेक्टर को बहुत मतलब प्रशंसा कर रहे थे, तो उर्वशी सुनी. और जब नारद जी बता रहे थे उनका कैरेक्टर ऐसा कौन सा बढ़ाई था, कौन सा ऐसे गुण था जो गुण के प्रति उर्वशी आकृष्ट हुई. प्राय जगत कृष्ण जो भक्त होता है ना, जगत के लोग तो छोड़ दीजिए, स्वयं कृष्ण भी भक्त के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं. उर्वशी क्या, पुरुरोबा यदि एक राजा था, राजा होते होते हुए वो निश्चित रूप से भक्त था. यदि भक्त नहीं होते तो बोनाफाइड मास्टर, एक बोनाफाइड एक प्रामाणिक भगवान का प्रतिनिधि, उनके विषय में स्वर्ग जैसे जगह में उनका कीर्ति को नहीं गाते. एक भक्त ही भक्तों का कीर्ति को गाता है. नारद जी जैसे संत वो प्रमाण कर देते हैं पुरुरोबा का प्रसंग को गा करके कि निश्चित रूप से पुरुरोबा एक भक्त था. ये निमित्त मात्र संसार के लोगों को भगवान को ले जाने के लिए वो ऐसे अभिनय करता है, लेकिन पुरुरोबा एक भक्त थे. नारद जी जैसे महान संतों के द्वारा वो प्रमाणित किया जाता है. और भक्तों का चरित्र तो ऐसे ही शोभनीय होता है, सुंदर होता है. और भक्तों के जीवन में ऐसे ऐसे सुंदर बातें होती है, कोई भी व्यक्ति वो आकृष्ट हो जाएगा. कैसे भी व्यक्ति भी वो आकृष्ट होगा, कैसे भी व्यक्ति क्या है, स्वयं भगवान भी उनके भक्तों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं. और दूसरी बात तो छोड़ दीजिए. तो निश्चित रूप से जो ग्लोरिफिकेशन हुआ ना स्वर्ग में नारद पुरुरोबा का, तो उसमें बहुत कीमती बहुत दाम है. उनका चरित्र के गुण, जो चरित्र का जो गुण है ना, उसमें कुछ दाम है. नहीं होता तो भगवान के शरीर से जो उर्वशी प्रकट हुई थी, ऐसे भगवान का शरीर से प्रकट होने वाली उर्वशी उनके प्रति आकृष्ट नहीं होता. तो निश्चित रूप से वो भक्त का चरित्र था, और भक्त का चरित्र तो निश्चित सुंदर होता है. ओके, और कुछ कमेंट्स है तो हरिदास प्रभु कुंडल कृष्ण प्रभु दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या पुरुरोबा का, चंडकवि प्रभु भी बता सकते हैं पुरुरोबा का कैरेक्टर क्या ऐसा था जिसके कैरेक्टर को सुन करके उर्वशी जैसे भगवान का शरीर से प्रकट होने वाली उर्वशी जैसे अप्सरा वो आकृष्ट हो गई. क्या ये चरित्र, क्या अद्भुत चरित्र था. ऐसे भगवान के भक्त अद्भुत होते हैं, ये अजामिल कह रहा है. अजामिल जैसे ब्राह्मण वो भी कह रहा है कि चतुभी अद्भुत सिद्धे, भगवान के पार्षद अद्भुत होते हैं. ये अजामिल ब्राह्मण, अजामिल का लाइफ हिस्ट्री में बताया जा रहा है. स्वयं अजामिल कह रहे हैं किसको, किसी को बता रहे हैं कि चतु भी अद्भुत सिद्धे. ये चार अद्भुत सिद्ध लोग आए थे, मुझे ये नरक जाने से बचा लिए, नरक जाने से रोक लिए. तो भक्त जो होते हैं ना, बड़े अद्भुत होते हैं. उनका शरीर से, उनके ज्ञान से, उनके बात करने से, उनका हर ढंग से, हर कार्य से एक अद्भुतता छुपी हुई रहती है. अब ये अद्भुत के पीछे कोई भी होगा. ओके, और किसी का कुछ प्रश्न? या पुरुरोबा का जो गलती है ना, गलती पुरुरोबा की, गलती हमें कर रहे हैं. हम सब रोज कर रहे हैं, मन में, शरीर में, वाणी में. मन उक्त पाणी भी, मन में कर रहे हैं, शरीर में कर रहे हैं, बपू में कर रहे हैं, वाणी में कर रहे हैं. ये मन में काम वासना सोच रहे हैं, शरीर में कर रहे हैं, वाणी में भी कितने गंदे गंदे बात कर रहे हैं. तो मन उक्त पाणी भी, ये सारे जो बातें हैं ना, हम सब कर रहे हैं. हमारा गलती को सुधारने के लिए पुरुरोबा इस प्रकार का हुआ, जीवन हुआ. और कुछ, एनी कमेंट? धन्यवाद. శ్రీల ప్రభుపాదకి నితాయి గౌర్ ప్రేమానందే.